पिछले कुछ दशक में दुनिया बहुत तेजी से आगे बढ़ी है। बस आधी सेंचुरी पहले ही 1973 में मोबाइल फोन इन्वेंट हुआ था और आज ऐसी टेक्नोलॉजी पर काम चल रहा है जिससे शायद मोबाइल फोन्स की जरूरत ही नहीं रहेगी। इस टेक्नोलॉजी का नाम है AI पेन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ह्यूमन एवोल्यूशन का नेक्स्ट स्टेप है जो हमें और भी तेजी से आगे ले जाएगा। हालांकि इस प्रोग्रेस की असली बैकबोन है इलेक्ट्रिसिटी। बिजली के बिना ना कंप्यूटर चलता है, ना लाइट, ना फैन और ना ही हमारी इंडस्ट्रीज। लेकिन आज सवाल ये खड़ा हुआ है कि इलेक्ट्रिसिटी मॉडर्न डिस्कवरी है या एंशियंट नॉलेज। वैसे तो माना जाता है कि 17th और 18th सेंचुरी में इलेक्ट्रिकल एनर्जी के साथ सीरियस एक्सपेरिमेंट्स शुरू हुए थे, दुनिया भर की बुक्स यही कहती है। पर चौंकाने वाली बात यह है कि हाल ही में आर्कियोलॉजिस्ट के हाथ कुछ ऐसे सबूत लगे हैं जो बताते हैं कि 9th सेंचुरी में लोग बिजली जनरेट कर रहे थे। कौन थे ये लोग और इस बिजली से वो क्या कर रहे थे, चलिए जानते हैं एक और दिलचस्प मिस्ट्री के बारे में।
मिस्ट्रीज, थियरीज एंड द अननोन। द इंडिया क्लासिफाइड पॉडकास्ट, अ रेड FM ओरिजिनल।
नमस्कार, मैं हूं पूरब और आप सुन रहे हैं इंडिया क्लासिफाइड, एक ऐसा शो जहां पर हम एक्सप्लोर करते हैं कुछ बेहद इंटरेस्टिंग मिस्ट्रीज और थ्योरीज। अगर ऐसा कोई टॉपिक है जिसने आपको क्यूरोसिटी से भर रखा है तो बताइए हमें हमारे ऑफिशियल इंस्टाग्राम हैंडल @redfmpodcast पर, या फिर मुझे DM कीजिए @rjpurab पर। ये कहानी है इंडोनेशिया की। इंडोनेशिया के आइलैंड जावा का एक शहर है योग्यकर्ता। 2009 में योग्यकर्ता की एक यूनिवर्सिटी के कैंपस में खुदाई का काम चल रहा था, तभी अचानक मजदूरों को जमीन में गणपति की मूर्ति दिखाई दी। खुदाई करते करते उन्हें पता चला कि वहां पर एक प्राचीन मंदिर छिपा हुआ है। काम तुरंत ही रोक दिया गया। कुछ देर में वहां लोगों की और रिपोर्टर्स की भीड़ जमा हो गई। ऐसी सिचुएशन में पॉसिबल है कि लोग क्यूरियोसिटी में आकर जाने अनजाने में कोई इंपॉर्टेंट एविडेंस डैमेज कर दें, इसीलिए पूरी जगह को सील कर दिया गया। इसके बाद आर्कियोलॉजिस्ट आए और वहां ऑफिशियल सर्वे शुरू हुआ। ये साइट किम्पुलन गांव के पास थी, इसीलिए इसे चंडी किम्पुलन टेम्पल नाम दिया गया। इन्वेस्टिगेशन शुरू होने के बाद वहां पर और भी कई प्राचीन आर्टिफैक्ट्स मिलते गए, जिन्हें स्टडी करके पता चला कि मंदिर करीब 9th सेंचुरी में बना था। लेकिन यहां की सबसे इंपॉर्टेंट खोज थी एक मिस्टीरियस शिवलिंग। आमतौर पर किसी भी मंदिर का शिवलिंग 3 डिफरेंट शेप्स का कॉम्बिनेशन होता है। ऊपर होता है गोल या सिलेंड्रिकल शेप, जिस पर हम पानी और दूध से अभिषेक करते हैं। इसके नीचे लिंग को ऑक्टागन शेप दिया जाता है ताकि उसका बेस अपनी जगह पर मजबूती से लॉक हो जाए, और सबसे नीचे के 1/3 पार्ट का आकार स्क्वायर होता है। लेकिन चंडी किम्पुलन में मिले शिवलिंग में सिर्फ 2 ही शेप्स हैं, सर्कल और स्क्वायर। इसमें बीच वाला ऑक्टागन शेप गायब है, मतलब लिंग शायद अपनी जगह से बार बार हटाया जाता था। लेकिन क्यों? इस एपिसोड में हम यही सवाल एक्सप्लोर कर रहे हैं। चलिए देखते हैं कि आर्कियोलॉजिस्ट की रिसर्च में क्या पता चला। इस शिवलिंग के नीचे एक पत्थर का बॉक्स मिला था जिस पर इंग्रेव थी एक यूनिक डिजाइन। गौर करने वाली बात यह है कि इस डिजाइन में गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज के टुकड़े बड़ी बारीकी से प्लेस किए गए थे। इस स्टोन बॉक्स को लैब में ले जाकर खोला गया और बॉक्स में से एक 8 इंच की स्टोन प्लेट मिली। मैं आपको बता दूं कि ऐसा कुछ दूसरे मंदिरों में देखने को नहीं मिलता। पहले तो यह माना गया कि यह बॉक्स शिवलिंग की प्राण प्रतिष्ठा के टाइम पर रखा गया होगा। आप शायद जानते होंगे कि हर मंदिर में भगवान की मूर्ति रखने के बाद प्राण प्रतिष्ठा की विधि होती है। प्राण प्रतिष्ठा के दौरान आमतौर पर कुछ कीमती सामान मूर्ति के ठीक नीचे जमीन में गाड़ा जाता है, लेकिन एक्सपर्ट्स की माने तो यह स्टोन बॉक्स प्राण प्रतिष्ठा का हिस्सा नहीं हो सकता, क्योंकि उसे जमीन में नहीं बल्कि शिवलिंग के बीच में रखा गया था। तो आखिर यह बॉक्स किस काम का था और इसे वहां किसने और क्यों रखा था? चंडी किम्पुलन के शिवलिंग और उसके नीचे मिले स्टोन बॉक्स के लिए एक्सपर्ट्स के पास 2 थ्योरीज हैं। पहली थ्योरी लिंक्ड है आयुर्वेदा से। क्या आप जानते हैं कि 1500 बीसी में लिखी गई चरक संहिता में स्वर्ण भस्म की बात की गई है? लिखा है कि गोल्ड एक अद्भुत मेटल है जिसे बेहद कम मात्रा में कंज्यूम करने से कई बीमारियां दूर होती हैं। आज भी हर आयुर्वेदिक स्टोर में आपको स्वर्ण भस्म का पैकेट मिल जाता है जिस पर उसके हेल्थ बेनिफिट्स लिखे होते हैं। इसीलिए पॉसिबल है कि जब चंडी किम्पुलन के शिवलिंग का अभिषेक होता होगा तब लिंग के नीचे रखे हुए पत्थर में चिपकी प्लेट से छोटे छोटे गोल्ड पार्टिकल्स पानी के साथ बहने लगते होंगे। पॉसिबल है कि इस पानी को इकट्ठा करके लोगों के इलाज के लिए इस्तेमाल किया जाता होगा। दूसरी थ्योरी और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। रिसर्चर्स के मुताबिक चंडी किम्पुलन के शिवलिंग से शायद इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जा रही थी। इस बिलीफ की वजह है ढेर सारे अजीब ऑब्जेक्ट्स जो एक्सकावेशन के दौरान हाथ लगे हैं, जैसे कॉपर वायर जिसे बड़े ध्यान से कॉइल करके रखा हुआ था। इसके अलावा है सिल्वर और आयरन के कुछ टुकड़े और कुछ छोटी छोटी मेटल प्लेट्स जो कोई छोटे से पंखे का हिस्सा लगती है। शिवलिंग के पास एक मिट्टी का बर्तन भी मिला है। टेस्टिंग के बाद पता चला कि इस बर्तन को राइस हस्क यानी चावल के छिलकों के पाउडर से भरा जाता था। यहां गौर करने वाली बात यह भी है कि इस बोल को कुछ इस तरह से पोजीशन किया गया था कि शिवलिंग पर होने वाले अभिषेक का पानी सीधा बोल में आकर गिरे। अनुमान लगाया जाता है कि राइस हस्क से भरे इस बोल में आयरन और सिल्वर के टुकड़े प्लेस किए जाते होंगे ताकि ये मेटल्स बैटरी के पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल्स की तरह काम कर सके। क्या आप मानेंगे कि मिट्टी का यह छोटा सा बोल शायद एक एंशियंट बैटरी थी? सोचिए कि जो सिविलाइजेशन मिट्टी के बर्तन से बैटरी बना सकता था उसने दूसरे कैसे कैसे गैजेट्स, डिवाइसेस और व्हीकल्स बनाए होंगे। ये बिल्कुल हो सकता है कि 9th सेंचुरी में दुनिया आज से ज्यादा एडवांस थी। सवाल यह भी था कि उस टाइम पर इंडोनेशिया में एक हिंदू मंदिर किसने बनाया होगा? क्या इंडिया से लोग इंडोनेशिया जाते थे या फिर इंडोनेशिया और इंडिया का लैंडमास कनेक्टेड था? इंडिया क्लासिफाइड के एपिसोड एक लापता प्रदेश कुमारी कंदम में हमने इसी पॉसिबिलिटी को एक्सप्लोर किया है। आर्कियोलॉजिकल एविडेंस कहता है कि शायद इंडिया के साउथ में एक ऐसा कॉन्टिनेंट हुआ करता था जो सदियों पहले समंदर में डूब गया। वैसे चंडी किम्पुलन का असली नाम भी हमें पता नहीं है, इसीलिए सोचने वाली बात है कि ऐसे कितने राज और कितना एंशियंट नॉलेज होगा जो हम तक कभी पहुंचा ही नहीं। आपको क्या लगता है बताइए हमें हमारे इंस्टाग्राम पर, डीएम कीजिए @redfmpodcast पर या मेरे हैंडल @rjpurab पर। मैं आपसे मिलूंगा अगले एपिसोड में। नमस्कार, जय हिंद।
You were listening to Red Podcast India Classified. Written by Mihir Joshi. Audio designed by Ayush Mehra. Creative direction by Dhruv Law. Send your feedback and suggestions. Write to us at podcast@redfm.in.